भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता हुआ है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। दोनों नेताओं की बैठक के दौरान डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजुमदार बताते हैं।
Since 2000, Singapore has invested nearly $160 billion in India. Last year, Singapore was the biggest foreign investor in India. We are going into the next stage of sustainable technologies, renewable energy, advanced manufacturing, such as semiconductors, and also in health and in skilling. So these are all areas where we have great complementarities. We complement each other and we need each other in order to develop further.
सिंगापुर को भारतीयों के लिए सुरक्षित जगह बताते हुए जयदीप मजुमदार ने कहा,
The diaspora is also a great bridge between us, and therefore you see it in the business environment here. You see it in the leadership here. You see the warmth that is there across the leadership. So I would say that Singapore has also been a safe, secure place for Indians and people of Indian origin to grow and prosper.
भारत लौटने से पहले गुरुवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के उद्यमियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने उड्डयन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं का उल्लेख करते हुए निवेश का अनुरोध किया।
आप आइए, नए एयरपोर्ट के मैदान इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए, डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। तो हम एक उस प्रकार से एक पैकेज बना करके चल सकते हैं, क्योंकि भारत में शायद मुझे बहुत ही निकट भविष्य में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने होंगे।
ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारत की चिंता और ग्रीन एनर्जी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,
हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है और हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है, और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलर पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है।
और अब चर्चा विधानसभा चुनावों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा अपने बागियों की चिंता सताने लगी है। पार्टी ने जैसे ही उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए, कई नेताओं ने बागी रुख अपना लिया। पहली सूची में कुछ विधायकों के नाम काट दिए गए हैं। इसके बाद पार्टी का असंतोष बाहर आ गया। टिकट न मिलने से नाराज रणजीत चौटाला ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया है।
आप समझो कि ठीक होगा, फैसला होगा, मुझे सवाल तरीके से कोई भी पार्टी इसे देगी, पर ये निश्चित है कि चुनाव।
आपको बता दें कि उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आने के बाद से ही पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वैसे कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है, इसी के चलते उम्मीदवारों का नाम तय नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का वादा जनता से कर रहे हैं।
जहां तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर आईएएस अफसरों के तरफ से इल्जाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी।
अपने जनाधार का दावा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को सही ठहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन को मजबूरी की बजाय जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जरूरी बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस पार्टी, पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की वकालत कर रही हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद ही होंगे। चुनाव के पहले यहाँ शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा गर्माने लगा है या भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। गुरुवार को महाराष्ट्र के सांगली पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया।
शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है। शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है। इन दोनों राज्यों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हालात का जायजा लेने के लिए गुरुवार को आंध्र प्रदेश पहुंचे। विजयवाड़ा के हालात को लेकर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं,
ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। एक साथ 400 मिलीमीटर बारिश और उसके कारण जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। बुढ़मेरू में कई ब्रीच हो जाने के कारण और अनपेक्षित पानी आने के कारण विजयवाड़ा में पानी भरा हुआ है।
लगभग 2 लाख किसान इससे प्रभावित हुए हैं। फसलों को हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।